कोई अपील किया था कि आओ हे खलराज आओ, कोई कहा था जन्म लेने के लिए? यानी भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो उसके पहले देवता लोग मीटिंग किए और प्रार्थना किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक कह, तब भगवान अवतार लिए। और ये भगवान लोग बिना प्रार्थना के ही अपने आप जहां तहां अवतार लेने लगे, ज्यादा करुणा हो गई, ज्यादा कृपालु हो गए हैं, इसलिए लोग अपने आप आते हैं, किसी के पुकारने की जरूरत नहीं। ये भगवान आए तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भार अवतरणाय, भार उतारने के लिए आए, न तो भाव वर्धना, भार वर्धनाय, कुंती महारानी कह रही है। अच्छा, अंतिम मत कह रहे हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणाहानि करिष्यानिति केचन। यदि कथा में आज कुछ देर हो जाए तो क्षमा करेंगे, है ना, क्योंकि एक संबंध है इन श्लोकों में। केचन अंत में, केचन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि कुंती ने सबका सुना है और सब एक मत के हैं। ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न वक्ता थे, भिन्न भिन्न वक्ता अपना अपना विचार दे करके चले गए, सभी लोग सब बात कहते हैं, लेकिन कहने की एक शैली होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप देवकी वसुदेव की प्रार्थना से आए, उनका पुत्र बने, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए, तो दोनों की प्रार्थना से आए, और सब लोग वर्णन करते हैं ऐसे। लेकिन सबसे सुपीरियर अवतार का कारण अब बता रही हैं, जो इनके मन में बसा हुआ है कि वास्तव में यही सबसे श्रेष्ठ कारण, वह क्या, भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी, अस्मिन भवे, इस भाव में, इस संसार में, जन्म मरण रूप इस जगत में जीव दुखी है, क्लिश्यमाना नाम, क्लेश भोग रहे हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं जीव। अच्छा, इस सभा में बैठे हुए किसी को संदेह है इस विषय में, क्लेश भोग रहे हैं कि नहीं सब लोग दुनिया में? किसी को यदि ऑब्जेक्शन हो तो बोल सकता है कि नहीं, मैं मानता हूं कि एंजॉय कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं सभी, क्लिश्यमाना नाम। अच्छा, क्यों क्लिश्यमाना नाम? अविद्या काम कर्म भी, दुख का कारण क्या है? इस प्रकार कारण है, अविद्या काम और कर्म द्वारा दुखी। अविद्या का अर्थ है स्वरूपा ज्ञानम अविद्या, स्वरूप का अज्ञान, इसको अविद्या कहते हैं। जीव कृष्ण का नित्य दास है या उसका स्वरूप है, इसका उसे स्मरण नहीं है, अज्ञान है, इसको अविद्या कहते हैं। विस्मरण नहीं कहेंगे, स्वरूप का विस्मरण नहीं है, स्वरूप का अस्मरण है, याद ही नहीं है शुरू से। यहां यह अर्थ लिखा जा रहा है, स्वरूपा अस्मरणम या स्वरूपा ज्ञानम अविद्या, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और इस कारण से देहादि में अभिमति है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और भिन्न स्वरूप में जड़ देह में आत्मबुद्धि है कि यह मैं हूं, और मैं के साथ यह मेरा है, इस प्रकार का भाव होता है, अभिमति कहते हैं। जब देह में मैं बुद्धि होती है और देह के संबंधियों में मेरी बुद्धि होती है, तब अब काम का उदय होता है, इच्छा का, मैं देह हूं तो देह के लिए यह चाहिए, हमारे संबंधी के लिए यह चाहिए, अनेक प्रकार की जो कामना है इसको काम कहते हैं, कामनाएं उत्पन्न होती है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, मैं ऐसे सुखी रहूंगा, ये रहूंगा, तो जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो उसके द्वारा कर्म करता है, कामनाएं कर्मों में लगाती है, और उन कर्मों से क्लिश्यमान आना, कर्म बंधन होता है, और इस तरह से जीव दुख भोग रहा है। यह दुख की परंपरा चल रही है, इसलिए इसको चक्र कहते हैं, संसार चक्र। स्वरूप का अज्ञान है इसलिए शरीर में अभिनिवेश है, शरीर में अभिनिवेश इसलिए काम है, इसलिए कर्म है, और कर्म से फिर यही चक्र, शरीर लेना, दुख भोगना, फिर शरीर छोड़ना, फिर कर्म करना, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, इस संसार चक्र। तो जीव सभी दुखी है, दुख भोग रहा है। कौन ऐसा है जो सुख से है? किसी के भी जीवन का आप आकलन करके देखिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, कोई राष्ट्रपति के शुरू से जन्म से लेकर के मरण तक आप विचार कीजिए तो ज्यादा समय तक वो क्लेश भोगा, नहीं सेंट परसेंट समय तक, मां के गर्भ से बाहर आने के बाद वो कौन राष्ट्रपति भवन में था जरा विचार कीजिए। मां का गर्भ जो है वो मल मूत्र का थैला है, और वहां पर आवास बच्चे को मिलता है, हम लोग सब लोग वहां पर रह करके आए हैं, है ना? यह क्या क्लेश नहीं है? केवल कोई भूल जाए इसलिए नहीं कहेंगे कि वो क्लेश नहीं है। कुछ लोग ये दलील देते हैं, जैसे बौद्ध लोग कहते हैं कि यदि हम इनको भूल जाए तो ये क्लेश नहीं है, भूल जाए तो क्लेश नहीं है। जैसे मान लीजिए बलि का बकरा है, या कसाई जो बकरा काटकर बेचते हैं, तो अन्य बकरे खड़े रहते हैं, तो उनको ये याद नहीं है या अनुसंधान नहीं है कि मेरे गर्दन पर भी तलवार चलने वाली है, तो इस कारण से मान लिया जाएगा कि ये दुख में नहीं है। केवल दुख का अनुसंधान न होने से नहीं माना जाएगा कि वो दुखी नहीं है, क्लेश नहीं भोग रहा है, वो दुख में, दुख हो रहा है। अब बुद्धिमान आदमी समझ जाते हैं कि दुख है, और अज्ञ लोग इसको नहीं समझ पाते। क्लिश्यमान आना, सभी जीव दुख भोग रहे हैं, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्वरूपा ज्ञानम श्रीधर स्वामी कहते, जैसे इसको हम समझेंगे, मान लीजिए हम सपना देख रहे हैं, तो सपने में वास्तव में हम अपने असली देह को और संबंधियों को भी भूल जाते हैं, देह बेड पर पड़ा रहता है, और सपने में हम एक अलग देह में अभिमति कर लेते हैं, मैं यह हूं, और उसी सपना के देह के अनुसार कामना भी होती है ना, उसके अनुसार कामना होती है, और इस देह को हम भूले रहते हैं। तो जैसे इस देह को हम रोज भूल जाते हैं, तो इस तरह से अनादि काल से हम अपने स्वरूप को भूले हुए, और यह सपना बदल बदल करके निरंतर चल रहा है, और स्वरूप विस्मृत, विस्मृत नहीं कह सकते, भूले हुए। विस्मृत उसको कहते हैं कि पहले स्मरण था बाद में भूल गए, उसको विस्मरण कहते हैं, लेकिन यह है अस्मरण, स्मरण ही नहीं है अनादि काल से। विस्मरण में और अस्मरण में अंतर है, ये शब्द की पकड़ शास्त्र की, शास्त्र जो बोलता है तो बहुत सोच समझ करके, त्रिकालदर्शी लोगों की ये भाषा है। कुंती महारिन भगवान से कहते हैं कि इस संसार में सभी जीव अपने स्वरूप की याद नहीं कर रहे हैं, अज्ञान है सबको, है ना? आप किसी से पूछिए आप कौन है, तो आदमी सीधे शरीर का परिचय देता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो, आप कहां से आए हैं और यहां से आए हैं, सभी शरीर को मैं मान लिए, और शरीर को मैं मानते हैं तो शरीर के संबंधी को मेरा मानते हैं, और इस कारण से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, सुखी रहने की, ये करने की, वो करने की। भागवत सुनने के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अपने को देह मान लिए, वो सोचते हैं कि अब हम देह को पोसें, देह के संबंधियों को पोसें, कि और हम फालतू काम करें, और आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है, को मालूम नहीं है कि अब श्रीमद् भागवतम से आत्मा का पोषण होगा, ये आत्मा की खुराक दी जा रही है, देह की खुराक चाहते हैं आत्मा के लिए। जैसे कोई सपना देख रहा है और सपना में कुछ खाए पिए और ये भूल जाए कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा कोई काम धंधा है, ऐसे ही सोया रहे और सपना देखा करे। इस तरह से हम लोगों की दशा है, हम लोग सपना में है, अपना स्वरूप याद नहीं, इस कारण से सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। तो सपना में जो भी दुख हो रहा है वो बिना जगे नहीं दूर होगा। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई। यदि हमारा सिर कोई सपना में काट रहा है तो हम ये भी देखते हैं कि हमारा कटा हुआ सिर दिखाई पड़ रहा है और हम रोते रहते। हम तो अब ऐसा नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि ऐसा देखता है आदमी कि हमारा सिर कटा है, सिर कटा है और मैं रो रहा और आह आह कर रहा, लेकिन वहां सिर नहीं कटा है। जब तक वो जगेगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। जगेगा जीव कैसे? जगने का मतलब अपने स्वरूप में आना, और स्वरूप क्या है हमारा कि हम कृष्ण के प्रेमी हैं, दास। तो यह स्वरूप कैसे जगेगा? जब हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे, उनका स्मरण करेंगे। इसलिए ऐसे दुख भोगने वाले जीवों के लिए श्रवण स्मरण और हानि, और हानि मैंने योग्य, जीव के श्रवण और स्मरण के योग्य लीला करने के लिए करिष्यन आप अवतार लेते हैं, जीवों को अपने स्वरूप में लाने के लिए, मतलब अपना दास बनाने के लिए आप अवतार लेते हैं। बिना श्रवण के और बिना स्मरण के जीव अपने स्वरूप में नहीं आएगा, और जब तक श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जाएगा तब तक जीव की नींद टूटने वाली नहीं। जब तक उसको ये दिखाया नहीं जाएगा कि कृष्ण हमारे परम प्रियतम हैं, हमारे बंधु हैं, हम उन्हीं के हैं, तब तक जीव ये संसार का आग्रह छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं निश्चित। वह किसी न किसी से प्रेम करेगा, किसी न किसी में आसक्त रहेगा। जब आसक्ति और प्रेम के विषय श्री कृष्ण नहीं आएंगे उसके श्रवण में, उसके स्मरण में, तो स्वाभाविक प्रेमी है ही, वो प्रेम करेगा दूसरे से। इसलिए आप आते हैं ऐसे लोगों के लिए श्रवण स्मरण करने लायक लीला करने के लिए, यहाँ लीला प्रस्तुत करके और इनको अपने धाम में ले जाने के लिए आप अवतार लेते हैं। केचन, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो मानो भगवान पूछ दे कि बुआ जी इसमें से सबसे अच्छा मत आपको कौन लगता है। सब तो ठीक ही है, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन समस्त कारणों में आप क्या सोचती हैं कि मैं किस लिए आता हूं? तो कुंती महारानी कहती हैं हमें यही सबसे अंतिम मत अच्छा लगता है, और इसीलिए अस्य पक्षस्य सिद्धांततां अभिप्रेत्य श्रवणादि फलम आह, इसी पक्ष की सिद्धांतता को व्यक्त करती हुई श्रवण आदि का फल बता रही, और संसार के जीवों को एक प्रकार का निमंत्रण दे रही कि देखो कृष्ण इसी के लिए आते हैं। अतः श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षुणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः तयैव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अतः जो आपके विषय में सुनते हैं श्रृण्वन्ति, दूसरा कोई गा रहा हो बोल रहा हो तो उस समय श्रृण्वन्ति, और सुनने वाला हो तो गायन्ति। गायन्ति और गृणन्ति, क्योंकि सुनने वाला नहीं है तो गृणन्ति, गृणन्ति का अर्थ जप करना। हर शब्द ही संस्कृत से गुनगुनाना बना है, हिंदी में गुनगुनाते हैं कुछ, बोलने और गाने के बीच में एक क्रिया है उसको गुनगुनाना कहते हैं, कुछ अपनी मस्ती में कुछ गाना हल्का गुनगुनाना कहते, जप करना, चैंटिंग शब्द से यह पकड़ में आ जाता है, चैंटिंग का यही अर्थ होता है। सिंगिंग और चैंटिंग में अंतर, गुनगुनाना ये जप के लिए खास करके कहा जाता है। तो जो गाते हैं, जो सुनते हैं, गाते हैं, जप करते हैं, अभिक्षणशः निरंतर सदा स्मरन्ति, स्मरण करते हैं किस चीज का, तव इही तव, इही मतलब लीला, आपकी लीलाओं को जो सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, स्मरण करते हैं, और दूसरा कोई यदि कीर्तन करता है, वर्णन करता है, तो उसका नंदन्ति, अभिनंदन करता, अनुमोदन करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे जन, ऐसे भक्त जन निश्चित ही आपके चरण कमल का दर्शन करते हैं। पश्यन्ति तावकम चरणाम्बुजम, आपके चरणाम्बुज का दर्शन करते हैं, मतलब आपका साथ पाते हैं, आपकी लीला में प्रवेश करते हैं। कैसे आपके चरण हैं? भव प्रवाह उपरमम, जो संसार सागर की धाराओं को सदा के लिए रोक देते हैं। न भगवान कैसे हैं कि इस भाव समुद्र से बिल्कुल परे है, इस तरह के बुढ़ापा, रोग, दुख, मरण आदि से परे जीव को स्वरूप मिलता है, जिसे पार्षद शरीर कहते हैं। तो भाव सागर की धाराएं सदा के लिए छूट जाती, पार हो जाती। उपरमम, यदि संसार के दुख से छूटना है, भव सागर पार करना है, तो श्रवण, गायन, कीर्तन, स्मरण और अभिनंदन, ये करना होगा। ऊपर के श्लोक में कह रहे हैं कुंती महारानी की, श्रवण स्मरण अरहाणि, अरह का अर्थ होता है योग्य, जीव के श्रवण और स्मरण करने योग्य करने के लिए। इसका अर्थ ये अभी है कि संसार में और जो बातें हैं और लोगों के जो कर्म हैं, वे श्रवण और स्मरण करने योग्य नहीं, उसे नहीं सुनना चाहिए और न स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने लायक और सुनने लायक करने के लिए कृष्ण आए और करके चले गए, और भगवान वेदव्यास देव ने इसको लिपिबद्ध कर दिया। तो सुनने और स्मरण करने लायक बस कृष्ण लीला है और कुछ नहीं। तो जो सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वही भगवान का दर्शन करते हैं। पश्यन्ति ते एव पश्यन्ति, एव सब में लगाना पड़ेगा, कई जगह लगाना पड़ेगा। ते एव पश्यन्ति, वही भगवान का दर्शन करते हैं। नान्य न अन्य, जो श्रवण नहीं करते हैं, गाते नहीं, कीर्तन नहीं करते, जप नहीं करते, स्मरण अभिनंदन नहीं करते, वे कभी नहीं देखेंगे कृष्ण को। यद्यपि भगवान हैं, भगवान का धाम है, लेकिन जो ऐसा करेंगे वही देखेंगे। ते एव वही पश्यन्ति, अच्छा कब? अचिरेण एव पश्यन्ति, शीघ्र ही देखेंगे। श्रीधर स्वामी जी एव शब्द कई जगह लगा रहे, केवल वही देखते हैं और जल्दी देखते हैं और देखते ही हैं, ऐसा कभी नहीं समय आएगा कि वे नहीं देखेंगे। श्रवण स्मरण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। अच्छा तावकम एव, आपको ही देखेंगे, आपका दर्शन पाएंगे, आपके साथ होंगे, और भव सागर सदा के लिए रुक जाएगा, उनका समाप्त हो जाएगा, जन्म मरण का बंधन इस प्रकार मिट जाएगा। यही सिद्धांत यहां पर आकर के अस्थिर ठहर रहा है। भगवान ने वसुदेव जी के पुत्र बनने के लिए अवतार लिए, ठीक है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिए भी ठीक है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिए भी बिल्कुल ठीक है, असुरों का वध करने के लिए अवतार लिए और अभी निश्चित ठीक है, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए तो और ठीक है, लेकिन दुखी जीवों को सुखी करने के लिए और उनके लिए गाने जोग, सुनने जोग, स्मरण करने जोग, लीला करने के लिए ये सबसे ज्यादा ठीक है, कुंती महारानी कहती। तो अब वह व्यक्ति कितना बड़ा अभागा होगा जो कृष्ण के विषय में नहीं सुनेगा, नहीं चिंतन करेगा, नहीं गाएगा, नहीं गुनगुनाएगा। ये देखिए भगवान की व्यवस्था, परम कृपालु हैं और यहां मायाबद्ध दुखी जीवों का हित करने के लिए आते हैं, नहीं तो वसुदेव जी को कहीं और जगह बुला करके भी उनका पुत्र बन जाते हैं, चाहे उनको ही अपनी नित्य लीला में बुला लेते, यहां पुत्र बनने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। पृथ्वी का भार तो संकल्प मात्र से दूर कर देते, असुरों का वध भी संकल्प मात्र से कर देते। महाराज की कीर्ति युधिष्ठिर महाराज की और भी तरीके से बढ़ा सकते थे, लेकिन जब तक इस जगत में आकर के वे लीला नहीं करते तब तक कोई क्या भगवान के विषय में सुनेगा करेगा? बस निराकार के अलावा उसका क्या अब रहेगा सिद्धांत, आश्रय क्या रहेगा बताइए? ईश्वर के विषय में धारणा है और पूछे क्या है तो निराकार, बस हो गया वर्णन, सारे ज्ञान की इति श्री हो गई। क्या है? निराकार है बस। तो कौन प्रेम करेगा उससे? निराकार से कोई प्रेम करता है? आज आपको पता लगा कि हमारी पत्नी निराकार हो गई, रहेगा प्रेम? सुनते ही रोना चालू करेगा आदमी, निराकार हो गई। अगर घर में अकस्मात बैठी है स्त्री और एकाएक निराकार हो जाए तो उसके आकार का चिंतन करके आदमी रोएगा, है ना? उसकी बात का, उसके स्वभाव का, उसकी सेवाओं की याद करके और रोने लगेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ वर्ष बीतते बीतते अगर सचमुच ये आशा हो जाए कि निराकार हो गई तब तो उसका प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसमें स्मरण भी आएगा तो साकार का ही आएगा। तो ऐसे लोगों के मन में ये सामान्य धारणा है कि भगवान निराकार है निराकार है, ऐसे ही मूढ़ों को मूर्खों को समझाने के लिए भगवान आकर यहां लीला करते हैं, ये कहो और ये सुनो तुम ठीक हो जाओगे। पर यह उद्देश्य लेकर भगवान आए अपने परिकरों के साथ, कहने सुनने स्मरण करने लायक लीला कर भी दिए और वो ग्रंथ में भी लिखा गया, साधु महात्मा कहते भी हैं फिर भी लोग नहीं सुनते, अब क्या किया जाए? लोग हमारे यहां कहते अब क्या करे, अब का घोर के पिया ही अब क्या करे। एक आदमी कह रहा था, मान लीजिए किसी को भोजन दे दिया यहां तक कि मुंह में डाल दिया तो कहता था अब का तोरा खातिर हम चलाई मुंह अब तुमको तो चबाना पड़ेगा ना कि हम ही अब चबा दे। पिबत भागवतम रसमालयम, यह लोटा गिलास रख दिया गया और भगवान वेदव्यास देव कहते हैं पिबत, लेकिन वो आदमी अभी दूसरा रस पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। तंबाकू का रस ले रहा है और दूसरा उपन्यास अखबार अभी उसमें रस ले रहा। ऐसे लोगों के लिए तो निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण बहुत ऊंचे लोगों के लिए है, तो जो भी पी सकता है उसके लिए है वास्तव। लेकिन दो विशेषण दिए गए हैं, रसिका और भाव का, जो रस तत्व को जानते हैं कि वास्तव में क्या रस है और जो भगवान के भाव से भरे पड़े हैं प्रेम से, उनको बुलाया जा रहा है पिबत पिबत भागवतम रसम, एकदम प्रस्तुत करके फ्रीज में रख करके भगवान वेदव्यास देव बोल रहे हैं, कभी सड़ने वाला नहीं है, आओ और पियो निःशुल्क, कोई दाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाय रे जीव बहुत दुर्भाग्य वास्तव में, रुचि नहीं है सुनने में। पिबत भागवतम रसम, पिबत भागवतम रसम। आप कहिए कि आइए दो चार दिन सुनिए भागवत, तो आदमी कहता है नित्यम भागवत से होया, वो नित्यम तुम्हारा किस दिन आएगा, मरने के बाद आएगा, क्या आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा ये आश्चर्य देखिए नित्यम भागवत से होया, केवल शब्द ही बोलोगे इसका प्रैक्टिकल भी कभी आएगा, यही है नित्यम भागवत से होया। यहां का भागवत खत्म होगा दूसरे जगह चालू, इसी को नित्यम भागवत सेवा कहते हैं। लेकिन आजकल लोग शब्दों का अर्थ तक नहीं समझ पाते हैं, यह आश्चर्य की बात। क्या कहा जाए, भागवत के शब्द को ही भागवत नहीं सुनने में सहायक बना लेते भागवत कहता है नित्य भागवत सुनो तो कहता नहीं नहीं कभी 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 नित्य नहीं। यह नित्य शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आता है, नित्य का क्या मतलब है। कुंती महारानी यहां समग्र क्लिश्यमान जीवों को संदेश दे रही है, दुखी जीवों को, सुनो गाओ स्मरण करो गुनगुनाओ और दूसरा कोई भजन कर रहा हो तो अभिनंदन करो, तुम कृष्ण के पास चले जाओ। यह नंदंती शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग श्रवण करते हैं कीर्तन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करते हैं। ये प्रसाद देना, ये माइक लगाना, व्यवस्था करना, इसको नंदन कहते हैं, अभिनंदन। दूसरा कोई करता है तो हम खुश हो रहे हैं, उसे सुविधा दे रहे हैं, इसको अभिनंदन कहते हैं। तो अभिनंदन करने वाले लोग भी पावकम चरणाम्बुजम पश्यन्ति एव अचिरेण, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। ये बिल्कुल सरल उपाय, भगवान कृष्ण इस जगत में आए मुख्य आशय उनका यही था कि हाँ ऐसी लीला करेंगे, ऐसी लीला करेंगे जिसको देख करके सुन करके बाद में और जीव हमारे तरफ आकृष्ट होंगे। और उसने भी कुछ तो ऐसी लीला करते हैं कि खुद उनका भी मन चमत्कृत होता है। वे कहते ऐसी लीला करेंगे जाते मोर चमत्कार, जो रस हमें बैकुंठ में नहीं मिला वह रस वहां प्राप्त करूंगा। एक तो उनकी अपनी लालसा थी, उन्होंने कहा कि अपनी नित्य शक्ति गोपियों के मन में परकीय भाव उत्पन्न करूंगा और मैं भी ऐसा अनुभव करूंगा कि मैं पर हूं, परकीय हूं, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, बाधा होगी तो इस रस का मैं आस्वादन करना चाहता जो गोलोक में सुलभ नहीं। और कुछ ऐसी लीलाएं करूंगा जिसे भक्त सुन सुन करके मेरे प्रति धर्म कर्म त्याग करके मेरी शरण में आएंगे। अपने परिकरों द्वारा ही धर्म का त्याग करवाकर भगवान ने सिखाया, जैसे गोपियों द्वारा और द्वारा, तो धर्म का त्याग करके मेरी शरण लेंगे, मेरा भजन करेंगे, ऐसी लीला करूंगा। और इस अवतार में भगवान ने किया, कृष्ण लीला सुन सुन करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके लोग कृष्ण के भक्त हो जाते थे। कुंती महारानी इसी रहस्य का यहां उद्घाटन कर रही है। श्रवण स्मरण करने लायक लीला करने के लिए आप अवतार लेते हैं, सबसे श्रेष्ठ कारण यही है। और एक प्रकार का आशीर्वाद देती हैं, कामना करती हैं जगत के जीवों से कि सुनो गाओ गुनगुनाओ स्मरण करो और अभिनंदन करो, इससे तुम कृष्ण को पा जाओगे। यही उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह कथा वास्तव में महारानी कुंती के विचारों का प्रैक्टिकल रूप है। यहाँ हम लोग सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, गुनगुनाते हैं और अभिनंदन करते हैं, सब तरह से सहायता करते हैं। भागवत सप्ताह की व्यवस्था में सहयोग देने वाले लोग अभिनंदन कर रहे हैं। हम लोग तो गांव में जब भागवत सप्ताह करते हैं तो भोजन बनाने का सारा उत्तरदायित्व स्त्रियों के जिम्मे रहता है, स्त्रियों के जिम्मे रहता है और ये लोग भोजन बनाती। तो कभी कभी कुछ लोगों के मन में आता है कि उसमें से कुछ स्त्रियां सुन नहीं पाती, लेकिन सुनने में वो कारण बनती है, इसलिए उनको भी भगवान की भक्ति में भाग मिलता है। धीरे 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 उनका मन अभिनिविष्ट हो जाता। एक बार एक गांव में भागवत होने वाला था तो हमसे लोग डेट पूछ रहे थे। तो मैं एक डेट डाला कि इस समय गर्मी का दिन पड़ता था। एक भक्त ने कहा, उस गांव का भक्त था, वो कहा कि लेकिन इस महीने में तो भैंस वहां नहीं रहेंगी, गाय भैंस नहीं रहेंगी इस महीने में। दूसरा भक्त कहा, तो गाय भैंस को सुनाना है, नहीं रहेंगे तो इससे क्या। कहा कि नहीं नहीं गाय भैंस सुनेंगे नहीं, लेकिन सुनने में मदद करती है ना, भक्तों को दूध दही चाहिए ना। तब देखिए गाय भैंस तक भागवत सुनने में अभिनंदन करती। तो अब भागवत कभी देहात में होता है तो हम लोग एक बार सोच लेते हैं कि गाय भैंस सुनने के लिए रहेंगे कि नहीं, तो विचार कर लेते तो जहां पशु तक भागवत का अभिनंदन करते हैं वो आदमी क्यों नहीं करेगा, है ना। तो गाय भैंस रहती हैं तो भक्त लोग खूब दूध दही खाते हैं और निताई गौर हरि डाकते हैं, भागवत सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसको अभिनंदन कहते हैं। जो भाग नहीं ले रहे हैं प्रत्यक्ष सुनने के लिए उनको चाहिए कि सब तरह से सहायता करें, इस तरह से पुण्य के भागी बनते हैं। हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वीत् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसयोजिताङ्घसाम् केवयं नाम रूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं जर्हि श्रीकाणामिवेशितुः। नेयं शोभिष्यते तत्र जथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपकौषधिभिरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्त ये धन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषण ऋषभावनिध्रो राजन्य वंश दहना नप वर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सुत उवाच पृथ्येथं कल्पदैः परिणोताखिलोदयः मन्दं जहाश वैकुण्ठ मोहयन्निव मायया तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसावयं स्त्रियश्च स्वपुरं जास्यान् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। क्या अद्य आज नह हमें त्वाम आप स्वकृते हिता अपने स्वजनों के लिए आपका जो भी कर्तव्य है आप कर चुके हैं। प्रभो हे स्वामी जिहाससी जाना चाहते हैं छोड़ कर जाना चाहते हैं स्वी क्या सुहृदः अपने अत्यंत प्रेमियों को अनुजीविनः जो आपके बिना नहीं जी सकते हैं उनको जेसाम जिनका जेसाम जिनका ना ना च और अन्य आपके अतिरिक्त अन्य भवतः आपका पदाम्बुजात पदाम्बुज के अतिरिक्त परायणाम आश्रय राजसु राजाओं के साथ जो जितांघसाम हमने जानबूझकर बैर किया है राजाओं के स्वजन युद्ध में मारे गए हैं अतः इस कारण वे हमसे बैर की गांठ बना लिए हैं। तो प्रथा इसके पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार के कारणों का उल्लेख कर रही है। वो कहती है मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि आप महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अपने प्रिय जदु महाराज के वंश में जन्म लिए हैं और जदु महाराज तथा युधिष्ठिर महाराज इन दोनों की कीर्ति बढ़ाने के लिए अब जन्म लिए हैं। जैसे मलय पर्वत पर चंदन जन्म लेता है तो उस चंदन के कारण मलय पर्वत का यश बढ़ता है। इसके साथ ही साथ कुछ महात्मा गण ऐसा कहा करते हैं कि देवकी और वसुदेव ने आपको पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तप किया था इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप देवकी के गर्भ से जन्म लिए यद्यपि आप अजन्मा हैं। और कुछ है महानुभावगण कहा करते हैं कि आप इस विश्व के हित के लिए और असुरों के वध के लिए जन्म लिए। कुछ का ऐसा कहना है कि यह पृथ्वी अतिशय भार के कारण उसी तरह से दुख पा रही थी जैसे समुद्र के बीच अति भार के कारण कोई नौका अब डूबे तब डूबे की हालत में हो। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने
आपसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना किया तो आप अवतार लिए। और कुछ विद्वानों का यह कहना है कि इस संसार में जीव बहुत क्लेश भोग रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दुख भोग रहे हैं, उन दुखी जीवों को सुखी करने के लिए आप उनके श्रवण स्मरण कीर्तन करने लायक लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। और प्रभु मेरा तो यही मत है, अंतिम मत ही मेरा मत है। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तयैव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् तव इहितं। आपके कर्मों को आपकी लीलाओं को ये जनः श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति स्मरन्ति और अन्य कीर्तमानम अभिनन्दन्ति ते एव तावकम पदाम्बुजम अचिरेण पश्यन्ति। पश्यन्ति एव बहुत शीघ्र दर्शन करते हैं। और आपके चरण कमल की विशेषता, आपकी यह विशेषता है कि आप जब प्राप्त होते हैं तो सदा के लिए जीव का भावबंधन समाप्त हो जाता है, वह आपकी नित्य लीला में आपके समान सुखी हो जाता है। तो अपनी नित्य लीला में, वैकुंठ लीला में सबको खींचने के लिए आप अवतार लेते हैं। ऐसे सभी कारण सत्य हैं, लेकिन मेरे मन के अनुकूल पूर्ण रूप से यही कारण लग रहा है। आप परम करुण हैं, जीवों का हित करने के लिए अवतार लेते हैं। इतनी ऊंची ऊंची बात कहने के बाद भी अब देखिए कुंती महारानी कहती हैं कि इस समय इदानी तव अस्मत परित्यागो अनुचित इति आशयना। इस स्थिति में हम सब बंधुओं का त्याग करके आपके लिए जाना उचित नहीं, वह अनुचित, इस समय मत जाइए। इसका कारण बता रही हैं। पहले कह रही हैं, हे स्वकृते हित प्रभो स्वानाम अर्थे यो कृत्य स कृतत्वया इति संबोधन। अपने भक्तों के लिए, पांडवों के लिए या मेरे लिए जो कुछ भी आपको करना उचित था आपने किया, सब कुछ किया हम लोगों के लिए, लेकिन प्रभु क्या आप हमें आज छोड़कर जाना चाहते हैं? अपि स्वी किम जिहाससी, क्या आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? हम आपके सुहृद हैं, हम आपके सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ है अति स्निग्ध, हम आपके अनुगामी हैं, हम आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं। और मतलब पुत्रों के पक्ष से बोल रही हैं कुंती महारानी, हम आपके स्निग्ध हैं, प्रेमी हैं, और इसके साथ ही साथ हम आपके अनुजीवी हैं। आप हैं, इससे हम जी रहे हैं, हम जी नहीं सकते हैं आपके बिना। तो क्या आज आप हमें छोड़कर द्वारका जाना चाहते हैं? चले ही जाएंगे, इस तरह से वितर्क प्रश्न कर रही हैं। अप्यद्य नस्तुम स्वकृते हित प्रभो जिहा ससी स्वित सुहृदो अनुजीविन, अपने सुहृदों को अपने अनुजीवियों को हम पांडवों को छोड़कर क्या आप जाना चाहते हैं? जैसा चान्यत भवतः पदाम्बुजात परायणम, हम लोगों का कोई परायण नहीं है, कोई आश्रय नहीं है भवतः पदाम्बुजात, आपके चरण कमल के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है इस संसार में। बल्कि संसार के जितने भी राजवंश हैं, राजा लोगों के परिवार हैं, उन सबसे हम लोगों का वैर हो गया, सब हमसे वैर छान लिए, राजसु योजित अंघसाम, अंघ का अर्थ होता है अपराध, क्योंकि हमने इस युद्ध में राजाओं को मारा है तो उनका परिवार, उनके संबंधी सभी हमसे रंजा दुखी। यह बात नहीं है कि हम लोग कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत करके सुखी हो गए हैं। पहले तो अपना वंश बैरी था, अब तो सारा विश्व बैरी हो गया, क्योंकि इस युद्ध में विश्व के प्रायः सभी राजा भाग लिए, तो उनके बंधु बांधव इसमें मारे गए। तो आपके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं, ऐसा एक बैरी आज कितना कठिन आक्रमण किया ब्रह्मास्त्र से, क्योंकि उसका पिता मारा गया, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य स्थिर मारे गए, इस कारण से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। पता नहीं कितने कितने अश्वत्थामा हमसे बदला लेने के लिए तैयार होंगे, अतः इस दशा में हम लोगों को छोड़ करके जाना आपके लिए उचित नहीं। हमको तो क्षण भर में कोई मार सकता है, भगवान के सामने भी कुंती महारानी कहती हैं आपका हमको छोड़ करके जाना अनुचित उचित नहीं। इस प्रकार से यह नारी हृदय है वास्तव में भगवान को पूर्ण समर्पित हृदय। कुंती महारानी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं, कृष्ण के बिना कोई रक्षक नहीं, कृष्ण के बिना कोई आश्रय नहीं। जेषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणम्, भवतः पदाम्बुजात् जेषां अन्यत् परायणम् न, आपके अतिरिक्त हम लोगों का कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षक नहीं है, बल्कि दुनिया भर से बैर हो गया, सब विरोधी ही हो। जिनके स्वजन मारे गए हैं तो सब जानते हैं कि युधिष्ठिर ने युद्ध किया, अर्जुन ने युद्ध किया, इसलिए सब युधिष्ठिर के बैरी हो गए हैं, और सभी इसी अवसर की प्रतीक्षा में हैं कि कब युधिष्ठिर से बदला लिया जाएगा, या अर्जुन को कब मारा जाएगा, भीम को कब मारा जाएगा। चूंकि महारानी कुंती एक सम्राट की माता है, राजमाता है, तो भवन में रहने पर पूरे विश्व का समाचार आता था किधर किसका क्या प्लान हो रहा है, राजा को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। जिनके बंधु बांधव मारे गए थे उनके पास से महाराज युधिष्ठिर ने कुछ गुप्तचर लगाए थे संवाद लाने के लिए कि हमारे विषय में क्या बात करते हैं, तो प्रायः सभी के स्वजन जो बचे हुए थे वे युधिष्ठिर से बदला चुकाना चाहते थे। इसी सत्य को कह रही हैं कुंती महारानी की, प्रभो हे हमारे रक्षक, हे हमारे आश्रय, रक्षा करने में सर्व समर्थ, क्या आप सचमुच हमें छोड़कर चले जाएंगे? हम आपके सुहृद, हम आपके प्रेमी हैं, आपके आपसे ही हम जीवित हैं, आप इस जगत में हैं तो हम लोग जी रहे हैं, आपके बिना नहीं जिएंगे। और यह बात पूर्णतः सत्य है। जब ही महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान कृष्ण इस धरा धाम का त्याग करके अपने नित्य धाम में चले गए, उसी समय उन्होंने मुकुट उतार कर फेंक दिया, मैं राजा नहीं रहूंगा अब, और हस्तिनापुर का राज पर भूमंडल का राज छोड़कर हिमालय चले गए। जब ही अर्जुन के मुख से उन्होंने सुना कि कृष्ण नहीं है, बस हो गया राज्य करना, सब कुछ छोड़ करके चले गए, जो कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए राज्य कर रहे थे। तो कुंती अपने पुत्रों के मनोभाव का अनुवाद कर रही है और अपनी बात भी कर रही है, पुत्र सब वही हैं, पुत्र वधु द्रौपदी भी है, तो सबको अपने आलिंगन में लेकर के सबको आत्मसात करके कहती है कि हम आपके अनुजीवी, अनुजीवी का अर्थ है कि आप जीवित हैं तो हम जीवित, मतलब आपके कारण हम जीवित, रात छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारी दशा वह होगी जैसे जीव इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, कोई काम नहीं करती। तो क्या आप चले जाएंगे? इसमें अपी और स्वी दो अव्यय है। एक प्रकार का प्रश्न है कि आप चले जाएंगे, क्या आप इतना निष्ठुर हो जाएंगे? अब तक तो रह रह करके बचा रहे थे, अभी अभी पांडवों को बचाए थे, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, परीक्षित को बचाए गर्भ। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम लोगों की विपत्ति दूर हो गई है और इसलिए अब आप जाना चाहते हैं? नहीं, आपका जाना उचित नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण मानो अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ जी, ननु तव बंधवो जदव पुत्राश्च पांडवा शूरा समर्थाश्च तत्किं कार्पण्यं भाषसे। बुआ जी, आपके नैहर के लोग जादव बहुत बड़े वीर हैं, समर्थ हैं। यदि राजा आपके विरोधी हो गए हैं तो वे करेंगे क्या? आपके जो बंधु हैं द्वारका में जादव, वे बहुत समर्थ हैं, वीर हैं, और पांडव भी जिन्होंने इस विश्व युद्ध को जीता है, महाभारत को जीता है, ये भी शूर और समर्थ हैं। फिर इस तरह से क्यों अपने को हीन कह रहे हैं? तुम्हारे भाई हैं, मतलब हमारे पिताजी तुम्हारे भाई हैं, भतीजे हैं, बंधु हैं, सब भरे पड़े हैं, और अपने पांच पुत्र भी हैं, एक एक पुत्र पूरे विश्व को जीतने वाला है, तो क्यों इतना दीन भाव से बोल रही है? क्या हमारे बिना तुम्हारी रक्षा नहीं होगी? और इसी पर कुंती महारानी कहती हैं, के वयम नाम रूपाभ्याम जदुभिः सह पांडवः भवतो अदर्शनम जर्हि हृषी काण निवेशितुः। जदुभिः सह वयम पांडवः के, जादवों के साथ ही हम पांडवों का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है? जब तक आप साथ में हैं तब तक अर्जुन में बल है, भीम में बल है, आप नहीं रहेंगे तो इनमें कोई बल नहीं रहेगा, जादव हो या पांडव हो। जब तक आप हैं साथ में तब तक इनमें वीरता है, पराक्रम है, आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों की वही दशा हो जाएगी जैसे ईश के बिना इंद्रियों की दशा होती है। इंद्रियों का ईश स्वामी है जीव। जीव जब तक देह में है, जीव जब तक देह में रहता है तब तक इंद्रियां काम करती है, आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ काम करता है, पैर चलता है, लेकिन जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, इंद्रियां किसी काम की नहीं रहती। ये वयम नाम रूपाभ्याम, इंद्रियों का नाम भी उस समय रहता है, यह इंद्रिया है, रूप भी रहता है, लेकिन रूप और नाम रहते हुए भी क्या महत्व रहता है? कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी मान लीजिए मर जाए, मरते ही रहते हैं, प्रसिद्ध हो या अप्रसिद्ध हो, तो जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है, मरने का मतलब यह। और जीव के शरीर से विदा होते ही कोई इंद्रियां काम नहीं करती। बहुत बड़ा विद्वान हो और मान लीजिए आज ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके नाम से पत्र आ गया, तो उसके आंखों के पास ले जाए कोई कि ये बांचिए आपका पत्र आया, तब हो गया बांचना। जब तक जीव शरीर में था तब तक वो आंखें काम कर रही थी, या कोई कुछ कहे तो वो सुन नहीं सकता है, कोई सुंदर पुष्प ले जाए उसकी नासिका के पास सूंघ नहीं सकता, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अब इंद्रियों का नाम है, कोई कहे आंख तो है, आंख है और नाम भी है और रूप भी है, कान है, नाम भी है, रूप भी है, लेकिन नाम रूपाभ्याम, नाम और रूप के रहते हुए भी क्या वैल्यू है जीवात्मा के बिना इंद्रियों का? यही दशा हमारी है प्रभु। आप हैं तब तक हम लोगों में पराक्रम है, तेज है, सब कुछ है, आप नहीं रहेंगे तो हमारी कोई कीमत नहीं, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, इसलिए आप हमें छोड़कर मत जाइए। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है तो इस स्थिति को समझ पाता है वास्तव में कि कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ। इस संसार में अज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे बहुत बड़े स्वजन है, होम मिनिस्ट्री में हमारा सोर्स है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है, लेकिन वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कृष्ण के बिना कोई सोर्स कुछ भी काम नहीं करेगा। कृष्ण वास्तविक रक्षक। क्या है जादव और क्या है पांडव आपके बिना, दृष्टांत दे रही हैं हृषिका नाम इव ईशितु, जीवात्मा के बिना जैसे ईशितु अदर्शन, जीवात्मा के अदर्शन के साथ ही मतलब उसके शरीर से विदा होते ही इंद्रियां काम नहीं करती। और जीव क्या है, जीव भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत तुच्छ अंश है, एक प्रकार से कृष्ण ही शरीर को जीवित रखे हुए, क्योंकि उनका अंश जीवित किया है। जैसे सूरज की एक किरण आकर के कहीं कुछ काम करे तो वह कार्य सूरज का माना जाएगा, है ना, क्योंकि वह किरण सूरज का अंश है। तो इतने शरीरों में हम सभी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि कृष्ण की शक्ति ही शरीर को जिला रही है, कृष्ण के कारण शरीर हिल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस स्थिति को समझना चाहिए, इस रियलाइजेशन की आवश्यकता है वास्तव में। कभी भी किसी प्रकार से मन में दूसरे का भरोसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ही सूर्य अस्त हो जाता है और प्रकाश नहीं रहता है तो आंख में देखने की कोई शक्ति नहीं रहती, तो उधर मान लीजिए सूरज भी न रहे, प्रकाश भी न रहे और जीवात्मा भी निकाल दिया जाए, तब क्या देखेंगी आंखें, कुछ नहीं देख सकती। आंखों से हम नहीं देख रहे हैं, देखने वाला भीतर है वो देख रहा है, आंख नहीं देख रही है और न तो प्रकाश देख रहा है। कोई अंधे आदमी के पास या मरे हुए आदमी के पास 1 करोड़ वाट का बल्ब जला दीजिए, जो सूरज ही साक्षात उदित हो जाए और मरा हुआ आदमी है तो क्या देखेगा, भीतर देखने वाला चला गया, जो शरीर में रहकर देख रहा था, सुन रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, चला गया। तो जीव की अनुपस्थिति पर जो दशा इंद्रियों की होती है वही दशा हम पांडवों की और जादुओं की आपके बिना है। मैं जानती हूं कि हमारे नैहर के हमारे भाई वसुदेव जी या भतीजे प्रद्युम्न आदि जो भी हैं, नहीं बलराम आदि, ये तभी तक बलवान है जब तक आप है, और यह देखा भी गया है श्रीमद् भागवतम में कि अपनी अंतिम लीला में भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को यह संदेश दिया अपने सारथी को, कहा कि जब अर्जुन आएंगे तो उनको कह देना कि मेरी पत्नियों को महाराज युधिष्ठिर के आश्रय में ले जाएंगे, और भगवान भेंट नहीं किए अर्जुन से, विरह में रुलाने के लिए भेंट नहीं किए, इतना प्रेम करते थे अर्जुन से लेकिन जाते समय भेंट नहीं की। संदेश दे गए दारुक से कि कह देना महाराज, कह देना अर्जुन को कि हमारी पत्नियों को महाराज युधिष्ठिर के आश्रय में ले जाएंगे। तो अर्जुन आए, बहुत विलाप किए, अंत में भगवान की आज्ञा का पालन किए, भगवान की कुछ पत्नियों को वे ले जा रहे थे हस्तिनापुर महाराज के आश्रय में रखने के लिए। तो वृंदावन के पास भीलों ने अर्जुन को लाठी से हरा करके छीन लिया स्त्रियों,
जबकि देवता इनके सामने कुछ नहीं थे, और वही गांडीव धनुष अर्जुन का था, वही गांडीव धनुष था, रथ था, घोड़े थे, वही अर्जुन थे, लेकिन कृष्ण के बिना भीलों ने, गोपों ने लाठी से मार पीट करके छीन लिया। वास्तविक बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण ही भीलों के रूप में बने थे, वे अपनी पत्नियों को वहीं वृंदावन में रखना चाहते थे, इसलिए वे अर्जुन को हरा कर छीन लिए। वास्तविक सिद्धांत यह है, आचार्य लोग इसको समझाए, लेकिन जो कुछ भी हो बाहरी दृष्टि से देखा गया कृष्ण के बिना अर्जुन का कोई वैल्यू नहीं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की कथा में लिखे हैं, बोले हैं कि जब कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मर जाता है तो एक बच्चा भी जा करके उसके सिर पर जूता मार सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इवन ए चाइल्ड कैन किक ऑन हिज फेस, ऐसे लिखे। मान लीजिए कोई मर गया, बहुत बड़ा आदमी, और उसका कोई रक्षक नहीं है, तो एक बच्चा भी खेलते खेलते जाएगा तो कहेगा उठो, मार सकता है पैर से, लेकिन उस पर अब वहां वो क्या करेगा। वही आदमी जब जीवित होता है तो ऐसे ऐसे बच्चों को उठाकर पटक देता है, फोन करता है, क्या क्या करता है, लेकिन जब जीवात्मा नहीं रहा, प्राण नहीं रहा, तो सब बेकार। इंद्रियां रहती हैं, उनका नाम भी रहता है, रूप भी रहता है, लेकिन लेकर के लोग जला देते हैं किसी काम का नहीं। कृष्ण के बिना यही दशा है, समाज की, परिवार की, देह की। यह देह तभी तक सुंदर है जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति है। यदि कृष्ण की भक्ति नहीं है किसी के देह में तो वास्तव में मरा हुआ है, बिल्कुल मुर्दा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जब तक जान नहीं है शरीर में तो वो शरीर व्यर्थ है।